Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dhyaye Nityam Mahesam Rajat Girinibham Charu Chandra Vatansam Ratna Kalpojjalangam Parasumrigavara Vitihastam Prashannam Padmasinam Samantat Stutam Amaraganir Vyagrakritim Vasanam Visvadyam Visvavandyam Nikhilabhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padmabhavam Vasishtam Saktim Chatatputra Parasarancha Vyasam Sukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogindramathasya Sisyam Sri Shankaracharya Mathasya Padma Padancha Hastamalakancha Sisyam Tantotakam Vartikakaramanyan Asmadpuram Santatamanatosmi Visuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Shreyah Prapti Nimittaya Namaha Somardha Dharine Om Shantihi Shantihi Shantihi
Om. Adiguru Bhagavan Shankaracharya Virachit Shivananda Lahari इस शिव भक्ति से ओतप्रोत स्तोत्र के आधार पर भगवान शिव की महिमा का वर्णन चल रहा है। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, उनके भावों को इन श्लोकों के माध्यम से हम परिचित होंगे। अभ्यास के लिए आठवां श्लोक।
यथा बुद्धि सुक्तौ रजतमिति काचास्मनि मणिर् जले पेष्टे क्षीरम् भवति मृगतृष्णा सुसलिलम् तथा देव भ्रांत्वा भजति भवदन्यं जड़जनो महादेवेशं त्वं मनसि च नमत्वा पशुपते गभीरे कासारे विसति विजने घोर विपिने विशाले शैले च ब्रह्मति कुसुमार्थं जड़मति समर्पेकं चेतस सरसिजमुमानाथ भवते सुखेनावस्थातुं जनैह न जानाति किमहो नरत्वं देवत्वं नगवन मृगत्वं मसकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम् सदा तत्पादाब्जं स्मरण परमानंद लहरी विहाराशक्तं चेत् हृदयमिह किं तेन वपुषा वटुर्वागेहिव यतिरपि जटिव तदितरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं
तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते त्वदीयस्त्वं शंभो भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेवा बहिरपि वने वाद्य शिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शंभो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी यथा बुद्धिसूक्तौ रजतमिति काचास्मनिमणि जले पेष्टे क्षीरं भवति मृगतृष्णा सुसलिलं तथा देवभ्रान्त्वा भजति भवदन्यं जडजनो महादेवेश त्वं मनसि च नमत्वा पशुपते यथा बुद्धि सुक्तो। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं जड़ जनो हे शिव हे परमात्मा हे पशुपते बहुत से व्यक्ति पैदा तो मनुष्य के रूप में हुए हैं, देखने में तो लगता है कि ये चलते फिरते हैं इसलिए चैतन्य ही हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जड़ पदार्थों के चिंतन करते करते उनकी बुद्धि भी जड़ हो चुकी है। इसीलिए चैतन्य के बारे में वो सोचते ही नहीं, अपने को भी वह जड़ ही मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भूतों का जो परस्पर संयोग है उस संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति होती है। चार भूतों का परस्पर संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए जिसको तुम चेतना कह रहे हो यह भी जड़ भूतों का ही कार्य है। ये सिद्धांत चार्वाकियों का है। वे लोग उदाहरण देते हैं कि अन्न को जड़ मानेंगे कि चैतन्य मानेंगे, फल को जड़ मानेंगे कि चैतन्य मानेंगे। सामान्यतया तो सब व्यवहार में उनको जड़ ही तो मानते हैं ना, अन्न को जड़ ही मानते हैं। आप सब्जी को, मूली को, गाजर को, गोभी को, टमाटर को जड़ मानोगे कि चैतन्य मानोगे? अब यदि कोई चैतन्य मानता तो चक्कू लेकर काटता क्या है? निश्चिंत होकर चक्कू से काटता है, उस समय उसके मन में किसी को काट रहा हूं, किसी को मार रहा हूं, ये भावना होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि सभी की यह मान्यता है कि ये संवेदना रहित है इसलिए जड़ है, ये मान्यता है। इसी तरह जो भात हम खाते हैं चावल, उसका उपादान कारण मूल चावल को हम जड़ मानते हैं कि चैतन्य मानते हैं? सामान्यतया हम चावल को, भात को जड़ ही मानेंगे, अन्न को जड़ ही मानते हैं। गेहूं को यदि चैतन्य मानते तो चक्की में पीसने जाते क्या? गेहूं को यदि हम जड़ चैतन्य मानते तो चक्की में पीसने तो नहीं जाते। यहां तक कि जब गेहूं पीसने की तैयारी करते हैं तो उसमें कहीं घुन आदि जीव होंगे तो हम उनको अलग करते हैं। क्यों? यदि गेहूं पीसते समय ये भी उसमें चले गए, निकले नहीं, हटाया नहीं हमने, तो बेचारे ये जीव सब मरे जाएंगे। तो उसी गेहूं में रहने वाले इन कीड़ों को, घुन को, अन्य कीड़ों को तो हम चैतन्य मानकर हटाते हैं, लेकिन वो गेहूं के जो दाने हैं उनको तो हम चैतन्य नहीं मानते हैं ना, जड़े ही मानते हैं। इसलिए हम संकोच और निसंकोच होकर हम चक्की में उसको पीस लेते हैं। इसी तरह चावल को जड़े मानते हैं, इसलिए हम उसको राइस कुकर में डाल देते हैं। चैतन्य मानते तो क्या हमारी हिम्मत होती, साहस होती राइस कुकर में डालकर पकाने की? सामान्यतया यही। लेकिन वो लोग कहते हैं ये जड़ होने पर भी चावल, सब्जी इत्यादि, ये सब अन्न जड़ होने पर भी इनको यदि 5-7 दिन किसी डब्बे में बंद करके रख दो तो इसमें चेतना यानी जीव पैदा होते हैं कि नहीं? हैं? कहां से पैदा हुए वो जीव, बोलो? जड़ अन्न से न पैदा हुए? तो जड़ से चैतन्य पैदा हो गया, यही तो उदाहरण है। तो चार्वाक कहते हैं कि ये जो जितनी भी चेतना तुम कह रहे हो यह जड़ से पैदा हुआ है, कोई परमात्मा से पैदा हुआ नहीं है। तुम लोग मानते हो खाली परमात्मा परमात्मा, कहीं परमात्मा से पैदा हुआ हमने कुछ भी नहीं देखा है। परमात्मा से आत्मा पैदा हुआ हमने नहीं देखा है, चेतना पैदा हुआ वो हमने नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा है, न तुमने देखा न हमने देखा है। क्या देखा है? प्रत्यक्ष देखा है कि जड़ अन्नों से हैं चेतना जीव पैदा हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको तुम चेतना चेतना कह रहे हो वो जड़ का कार्य है ना? ये तो चार्वाक का सिद्धांत है। वो लोग बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। अन्न को सड़ने की बात तो सभी लोग अनुभव करते ही हैं। उन लोगों का एक प्रसिद्ध फॉर्मूला है, भैंस का दही और भैंस का ही गोबर। हम लोग न गोबर को चैतन्य मानेंगे न दही को चैतन्य मानेंगे। हालांकि कुछ लोग दही नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि यदि दही खाएंगे तो जीव हिंसा होगी, ये मान्यता है ना, इसीलिए दही नहीं खाते हैं। हमारे जैन बंधु लोग यही तो है, उन लोगों की मान्यता है कि दही नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो दही? कि उसमें बहुत से जीव हैं, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन छोटे से ये सूक्ष्म वीक्ष यंत्र के द्वारा देखेंगे तो उन जीव प्रत्यक्ष दिखते हैं। स्थूल चर्म चक्षु से प्रत्यक्ष न दिखे तो भी यंत्र से देखेंगे तो उसमें सूक्ष्म जीव विद्यमान है। इसलिए उन लोगों ने दही खाना छोड़ दिया। लेकिन गोबर भी हमारी मान्यता अनुसार जड़ है, दही भी हमारी मान्यता के अनुसार जड़ ही है। दोनों को सम मात्रा में मिश्रण करके किसी जमीन में गाड़ दो, दोनों को डाल दो, मिला दो और एक हफ्ते के बाद देख लो तो बिच्छू पैदा होते हैं। बिच्छी हैं, जहरीले बिच्छे। अब ये तो चार्वाकियों ने प्रयोग किया होगा, ऐसे तो नहीं कहा होगा। और तुम लोग करना चाहो तो प्रयोग कर लो भाई, हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि पीपल के पेड़ के जड़ में डालना, ये भी शर्त रखा है उन्होंने। उसके जड़ में कहीं गड्ढे में डाल दो, मिट्टी और पत्थर हुआ जहां वहां डाल दो, एक हफ्ते के बाद बिच्छू पैदा होते हैं। और स्वाभाविक ही है, अरे खाली गोबर जहां रखा है वहीं गोबर से कीड़े पैदा होते हैं, जहां दही रखो तो वहीं से कीड़े पैदा होते हैं, ये बात अलग है। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि जड़ जड़ से चेतना की उत्पत्ति होती है, ये मान्यता कुछ लोग की है, उनको कहते हैं जड़ मति। या जिसकी मति माने बुद्धि का विषय केवल अध्यात्म और अधिदेव न होकर केवल अधिभूत मात्र जिसकी बुद्धि का विषय हो, जड़ पदार्थ ही जिसके बुद्धि का विषय हो, उसके अलावा वो चेतना सत्ता को वो चिंतन ही नहीं करता है, रात दिन जड़ वस्तु का ही चिंतन करता है, उसको क्या कहेंगे? जड़मति। तो हम लोग जो है जरा समझदार हैं, लक्ष्मी की बहुत चिंतन करते हैं, करते हैं ना, तो इसलिए हमने लक्ष्मी को जड़ न मानकर चैतन्य मान लिया। बोलो, लक्ष्मी को हम जड़ मानते हैं कि चैतन्य मानते हैं? पैसे को जड़ मानते हैं, है ना? वो क्वाइन होते हैं कि नहीं आजकल, उसको हम जड़ मानते हैं कि चैतन्य मानते हैं? पैसे को तो जड़ मानते हैं, नोट को भी जड़ मानते हैं, लेकिन लक्ष्मी को हम क्या मानते हैं? तो हम बड़े होशियार हैं, जड़ की कामना करते हैं चैतन्य से, और रात दिन जड़ की चिंतन करते हैं। तो कभी कभी कोई ये ना कहे तू जड़ वस्तु का चिंतन करता है, तो फट से कह देते हैं नहीं कहां जड़ का, हम तो लक्ष्मी की चिंतन करते हैं, हम चैतन्य, लक्ष्मी चैतन्य है इसलिए हम लक्ष्मी की चिंतन करते हैं, तो फट से अध्यात्मवादी बन जाते हैं वहां। हाँ, तो ये सब अधिभूतवादी, जड़मती, जड़ वस्तु का चिंतन ध्यान करते करते जिसका मति, जिसकी मति भी जड़ हो गई, ऐसे को जड़मति ऐसा संबोधन किया है। ऐसे जड़ जन संसार में बहुत है, उन लोगों को संसार में भ्रांति बहुत होती है, स्वाभाविक ही है, हम लोगों को भी भ्रांति होती है। हम लोगों को भ्रांति कैसे होती है? शंकराचार्य जी यहां कह रहे हैं, यथा बुद्धि सुक्तौ, ये भ्रांति का लक्षण है, यथा बुद्धि सुक्तौ रजतम इति, किदृश बुद्धि? सुक्तौ रजतम इति बुद्धि, जो रात दिन चांदी की चिंतन करेगा, चांदी के ही चिंतन करता हुआ घूमता रहेगा रात दिन, तो वह यदि कदाचित समुद्रों के किनारे में, समुद्र के किनारे में घूमने जाएगा, तो उसको समुद्र के किनारे में बहुत चांदी चांदी दिखेगा। समझे कि नहीं? जो रात दिन चांदी का चिंतन करने वाला होगा, उसको समुद्र के किनारे में क्या दिखेगा? चांदी दिखेगी। सुक्तौ सीपी, चांदी के समुद्र के किनारे होते हैं ना, शिपला, क्या बोलते हैं आप लोग? सीपी। हाँ, गुजराती में भी वही बोलते हो, शिपला। हाँ, वो शिपलों में वो व्यक्ति को चांदी दिखता है ना? सिपला यदि उल्टा पड़ा हो तो नहीं दिखेगा, सीधा पड़ा हो और धूप लगा हो तो कहेगा कि अरे वाह क्या चांदी है इधर, तो हम जिसको सोच रहे थे वो तो यहां, तो जिधर देखो उधर ही उधर है, यहां कोई चांदी लेने वाला है ही नहीं, चलो इसी को उठा लो, भर लो बोरी में। ये क्या है चांदी माने सिप में चांदी की बुद्धि होना, इसको सही बुद्धि कहेंगे कि गलत बुद्धि कहेंगे? जो निश्चय गलत फल देने वाला होगा उसको क्या कहेंगे? भ्रांति। जो निश्चय फल गलत देगा उसको कहते हैं भ्रांति, और जो निश्चय फल सही देता है उसको भ्रांति नहीं कहेंगे। और हालांकि भ्रांति भी दो प्रकार के माने हैं, आप लोगों ने कभी पंचदशी पढ़ी हो, सुना हो। पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने दो प्रकार के भ्रम बताया है। भ्रम माने भ्रांति, संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम। संवादी भ्रम का लक्षण उन्होंने बताया है तो भ्रांति, भ्रांति होने पर भी प्रयोजन सिद्ध करने वाला होगा तो वो भ्रांति को संवादी भ्रांति कहते हैं, और दूसरा भ्रांति होने के कारण ही प्रयोजन सिद्ध न करने वाला होगा उसको विसंवादी भ्रांति कहते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार सगुणो ब्रह्म उपासना, ध्यान देना, सगुण ब्रह्म उपासना ये भी भ्रांति है, समझे कि नहीं। वेदांत दर्शन के अनुसार सगुणो ब्रह्म उपासना ये भी भ्रांति है, प्रतिमा में विष्णु की बुद्धि ये भी भ्रांति है, ये ब्रह्म ज्ञान है। सामने प्रत्यक्ष दिखता हुआ प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करना ये सर्वथा भ्रांति है। काला सा ये गोल मटोल शालिग्राम का जो पत्थर है उसमें साक्षात चतुर्भुज नारायण बुद्धि करना ये सर्वथा भ्रांति है, ये प्रमा ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है, भ्रांति है ये। भ्रांति है तो फिर शास्त्र ने उस वो उपासना करने के लिए क्यों कहा, इस प्रकार के प्रतिको उपासना करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि सारे शास्त्रों में उपनिषदों में उपासना के प्रसंग में आप लोग सुन रहे हो ना, सुबह के प्रवचन में आजकल खूब झगड़ा चल रहा है तत्त्वमसि महावाक्य को लेकर और मनोब्रह्मेत्युपासीतः इस वाक्य को लेकर खूब झगड़ा चल रहा है। तो श्रुति उपासना की बात क्यों करती, भ्रांति है तो वेदांत ने उत्तर दिया क्योंकि भ्रांति दो प्रकार के हैं, एक संवादी भ्रम दूसरा विसंवादी भ्रम। प्रतिमा आदियों में मूर्ति आदि में भगवत बुद्धि करना है ये भ्रांति, लेकिन ये भ्रांति कैसा है, संवादी भ्रांति है, ये प्रयोजन को सिद्ध करने वाला भ्रम है। और दूसरा है विसंवादी भ्रम, जैसे किसी को रस्सी चाहिए और उसको सर्प में रस्सी बुद्धि करता है तो रस्सी का प्रयोजन उससे पूरा नहीं होगा, हालांकि तुलसीदास जी को हो गया, पता नहीं क्यों हो गया है? तो तुलसीदास जी का प्रयोग सिद्ध किया कि नहीं, सर्प में रस्सी की बुद्धि करके, भ्रांति है कि नहीं वो, हालांकि वो भ्रांति होने पर भी तुलसीदास जी का प्रयोजन पूरा हुआ। चलो यहां तो हो गया, और इधर किसी को सर्प की आवश्यकता थी, सपेरे को, और दिन भर सपेरा सर्प खोज रहा था कहीं सपेरा सर्प मिले पकड़ लूं और नाग पंचमी के दिन गांव गांव घर घर में ले जाऊं और लोग दक्षिणा देंगे, कमाई होगी, नाग पंचमी आने वाली है करके वो सर्प खोज रहा था, दिन भर खोजा कहीं मिला नहीं, शाम के समय में एक रस्से का टुकड़ा मिल गया, और उसने क्या निश्चय किया, ये सर्प है ना, और गया उसको पकड़ के टोकरी में रख लिया उसी समय, क्योंकि उस समय तो प्रखर प्रकाश था नहीं, मंदा अंधकार था। उसने बड़ी युक्ति से सावधानी से चिमटे से कैसे पकड़ के टोकरी में डाली, रात भर प्रसन्न हो गया, एक सर्प आज मिल गया, कल नागपंचमी का दिन है, सुबह सुबह जाऊंगा एक एक घरों में दिखाऊंगा, माताएं बड़े श्रद्धालु होती हैं तो माताएं उनका दर्शन करेंगे, पैसा चढ़ाएंगे, तो दिन भर में 1000-2000 की कमाई तो हो ही जाएगी है? बड़ा निश्चय, बड़ा खुश होकर रात भर सोया, और दूसरे दिन सुबह जब उसने नहा धो ली और बड़ा प्रसन्नता से वो डब्बा जो सर्प जिसमें बंद करके रखा था उसको लिया और निकला। कहां? नाग का दर्शन कराने के लिए। नागपंचमी के दिन आते हैं कि नहीं आप लोगों के? आते हैं? आया तो पहले घर गया, माताजी आज नाग पंचमी है, नाग का दर्शन करो। माताजी आज नाग पंचमी है, नाग का दर्शन करो। करता हुआ चिल्लाने लगा। बेचारी माताजी श्रद्धालु थी, आहा आज नाग लेके आ गया सपेरा, नाग का दर्शन। अच्छा हुआ घर में दर्शन मिल गया। बस बाहर दरवाजा खोल के बाहर निकली, गए बेटा दर्शन कराओ नाग का। उसने जैसे टोकरी का ढक्कन खोला तो क्या था उसके अंदर? है रस्सी। अब उसको क्या प्रयोजन पूरा होगा? दिन भर पैसा कमाई होगी? पहली बार उसको वहां से बहरंग वापस जाना पड़ा कि नहीं बोलो? किसके चलते? भ्रांति के चलते प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है ना। लेकिन तुलसीदास जी का भ्रांति के चलते प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं है? प्रयोजन सिद्ध हुआ। इसीलिए एक होता है संवादी भ्रम, दूसरा होता है विसंवादी भ्रम। इस संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम का परिभाषा यह है। इसका फर्क क्या है तो बोल दिया, एक भ्रम होने पर भी प्रयोजन पूरा करने में समर्थ है, दूसरा भ्रम होने के कारण ही प्रयोजन सिद्ध नहीं करता है। विद्यारण्य मुनि जी ने एक उदाहरण दिए तो वो सबसे परफेक्ट बचता है, है? पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने एक उदाहरण दिया है, वो परफेक्ट बैठता है। वो इसी के लिए दिया है, उपासना के लिए। हाँ, दो आदमी थे, कहते हैं दोनों को हीरे की आवश्यकता थी, समझे? नहीं, दोनों हीरा खोज रहे थे, कहीं हीरा मिल जाए तो मालोमाल बन जाए हम। तो कहते हैं कि कहीं एक जगह वास्तव में असली हीरा रखा था और दूसरी जगह दीपक जल रहा था, रात्रि का समय था। तो एक जगह दीपक जल रहा था, दूसरी जगह हीरा रखा हुआ था, दोनों को भ्रांति हुई, समझे कि नहीं? दोनों को क्या भ्रांति हुई? जहां हीरा था उसको भी हीरे की बुद्धि हुई और जहां दीपक जल रहा था उसको भी हीरे की बुद्धि हुई। तो दीपक में भी हीरे की बुद्धि और हीरे में भी हीरे की बुद्धि, क्योंकि वो जो हीरा बुद्धि हुआ है उसको कोई प्रमाण से सिद्ध करके तो हुआ नहीं है, दूर था वो। दूर होने के चलते दोनों सादृश्य थे, दीपक जैसा था हीरा वैसे चमक रहा था, हीरा जैसे चमक रहा था दीपक वैसे जल रहा था। तो दोनों में दोनों की हीरा बुद्धि हुई। दोनों ने कहा कि हम दो आदमी हैं और दो हीरे हैं, है? एक एक ले लेते हैं बॉस। तो एक व्यक्ति दीपक में हीरा बुद्धि करके दीपक को लेने गया, माने हीरे को लेने गया, दूसरा हीरे में ही हीरा बुद्धि की। हीरे में हीरा बुद्धि उसने जो की प्रमाण जन्य नहीं है, यदि प्रमाण जन्य होता तो दूसरों को भ्रांति न होता, समझे कि नहीं? और दोनों में से दोनों विचार कर रहे हैं तो कौन सा लेगा, ये लेगा कि ये लेगा? यदि प्रमाज्ञान हुआ होता तो दोनों में ये च्वाइस न होता, तो ये लेगा का कि ये लेगा? एक ने कहा कि दो हैं, दो दोनों ले लेते, एक एक ले लेते हैं, क्या ये लेना और क्या वो लेना, दोनों हीरा हैं। देखो हीरे में भी हीरा बुद्धि दोनों को हो रहा है और दीपक में भी हीरा बुद्धि दोनों को हो रहा है, ध्यान देना। दोनों में दो चीज में हीरा बुद्धि हो रहा है तो एक एक इसको मैं ले लेता हूं, इसको तू ले ले, बोले ठीक है, या तू ये लेगा मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, हम दो हैं दो हीरा है एक एक ले लेते हैं। दोनों गए लेने, हीरे को हीरा बुद्धि करके जो गया लेने उसको वास्तव में भ्रांति होने पर भी हीरा मिल गया। देखो बाद में जब उसको मिला बाहर में बाहर प्रकाश में लेके आ गया और दीन में जाकर जौहरी को दिखाया तो क्या निकला है? उसको अभी भी निश्चय नहीं कि हीरा कैसा है क्या है, तो जौहरी के पास दोनों गए है? हमारे पास हीरा है, तो एक को तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। जब वो नजदीक पहुंचा, नजदीक पहुंचा तो नीचे तेल है और ज्योति जल रही है, ये तो अरे ये तो हीरा नहीं है, ये तो बत्ती है। और उसको जब नजदीक गया उठाया तो अरे बत्ती नहीं है, ये तो हीरा है। तो ब्रह्म से एक को ब्रह्म होने पर भी हीरा मिल गया, क्योंकि हीरे में ही हीरा बुद्धि हुई, इसलिए ब्रह्म होने पर भी उसको हीरा मिल गया। उसको कहते संवादि ब्रह्म। दूसरे को दीपक में हीरा बुद्धि हुई, तो ब्रह्म होने के कारण ही, दीपक में हीरा बुद्धि होने के कारण उसको हीरा नहीं मिला। तो एक का प्रयोजन सिद्ध हुआ, भ्रांति से भी प्रयोजन सिद्ध हुआ, दूसरे का भ्रांति से प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। दीपक में हीरा बुद्धि, ये विषमवादी भ्रम का दृष्टांत है। हीरे में हीरा बुद्धि संवादी भ्रम का दृष्टांत है। इसी तरह जितने भी सगुण ब्रह्म की उपासना की बात आती है, उपासना भ्रांति ही है, प्रमा ज्ञान नहीं है। उपासना प्रतीक में शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, मूर्ति में नारायण बुद्धि, ये प्रमा ज्ञान तो नहीं है। प्रमा ज्ञान समझ रहे हो? प्रमाण जनित जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रमा ज्ञान। प्रमाण जनित जो प्रमा, उस प्रमा के द्वारा जो वस्तु का निश्चय होता है उसको प्रमा ज्ञान बोलते हैं। अब प्रमाण से यदि देखने जाओगे, शालिग्राम कभी भी नारायण नहीं हो सकता है। बात समझे कि नहीं? प्रमाण से यदि परीक्षण करने जाओगे शालिग्राम को, वो प्रमाण से क्या सिद्ध होगा? पत्थर ही सिद्ध होगा। प्रमाण से यदि सिद्ध करने जाओ प्रयोगशाला में, यदि प्रयोग करके ये नारायण है कि पत्थर है, प्रमाण से प्रयोग करने जाओगे तो मूर्ति में पत्थर ही सिद्ध होगा, नारायण प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं होगा। प्रमाण से नारायण सिद्ध नहीं होगा।